ओम शांति। पार्टियों से मुलाकात। गुजरात, गुजरात को एवर रेडी रहने, हाजी करने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात में दो विशेषताओं की निशानी अभी भी दिखाई देती है और आगे भी दिखाते रहना है। वे दो निशानियां वह दो विशेषता कौन सी है? संतुष्टता और प्रसन्नता। प्रसन्नता भी तब रहती है जब संतुष्टता है। तो ये दो विशेषताएं विशेष है और सदा रहेगी। समझा? गुजरात वाले कभी असंतुष्ट नहीं रहेंगे, ना करेंगे। दो विशेषताओं के कारण सदा उड़ते रहेंगे। गुजरात विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प से स्थापन किया है और जन्मते ही सदा सहयोगी रहे और अब भी है। समझा? सहयोग की उंगली सदा है ही। देखो, कोई भी प्रोग्राम होता है, सीजन भी होती है, तो ब्रह्मा भोजन में किसको बुलाते? गुजरात की माताओं को याद करते हैं। कितना भी कोई रोटी बनावे, लेकिन गुजरात जैसी नहीं बना सकते। ये विशेषता है। तो हर कार्य में एवर रेडी रहने वाले। अच्छा, तो क्या सुना? गुजरात को एवर रेडी रहने, जी हाँ करने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात में दो विशेषताओं की निशानी अभी भी दिखाई देती है और आगे भी दिखाते रहना है। वे दो निशानियां वह दो विशेषताएं कौन सी है? संतुष्टता और प्रसन्नता। प्रसन्नता भी तब रहती है जब संतुष्टता है। तो प्रसन्नता का आधार संतुष्टता, सदा खुश रहने का आधार संतुष्टता, और सदा दुखी रहने का आधार असंतुष्टता, अप्राप्ति। तो ये दो विशेषताएं विशेष है और सदा रहेगी। समझा? गुजरात वाले कभी असंतुष्ट नहीं रहेंगे और ना ही करेंगे। व्यक्ति असंतुष्ट क्यों रहता है? इच्छाएं उसे दौड़ाती है, इच्छाएं उसे भगाती है। धन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। व्यक्ति ने असंतुष्टता से दोस्ती की है। ये दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गहरी है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। थोड़ा मिला, जो मिला वो तुरंत ही व्यर्थ हो जाता है, और जो नहीं मिला उसे पाने की दूसरी दौड़ फिर से चालू हो जाती है। जिसके लिए बरसों तक स्वप्न देखे, वो जैसे ही मिल जाता है, चाहे वो घर है, अगर घर चाहिए तो घर के ही स्वप्न देखता है, और जिस दिन घर मिल जाता है उस दिन वो उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती, फिर और कुछ दूसरा चाहिए। पाते ही व्यर्थ हो जाता है, फिर और दूसरा चाहिए। वो जैसे मिलता है वो व्यर्थ हो जाता है। ये चक्र है, व्यक्ति को बहुत ही दौड़ाता है। इसके लिए व्यक्ति कभी असंतुष्ट नहीं हो पाता है, हमेशा ही असंतोष रहता है उसके मन में छाया हुआ। और जहां असंतोष है वहीं पर नर्क का जन्म होता है, जहां संतोष है वहां पर स्वर्ग का जन्म होता है। नर्क और स्वर्ग केवल भौगोलिक व्यवस्थाएं नहीं है, ये मन की ही स्थिति है। तो व्यक्ति अपने ही मन में स्वर्ग का निर्माण करता है और नर्क का निर्माण करता है। जितना वो असंतोष में रहता है उतना ही नर्क की यातना ही सहन करता है, परंतु वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये नर्क है। स्वर्ग की खोज जारी रहती है। तो प्रसन्नता और संतुष्टता दो बातें बाबा ने कहा है। प्रसन्न संतुष्टता क्या है? एक मणि है। तुम सब कौन हो? संतुष्ट मणि है। और संतुष्ट मणियों का प्रकाश क्या कहा है? चारों ओर फैलता है, हमेशा मूल्य में आता है ना। संतुष्ट मणियों का प्रकाश, संतुष्ट मणियों की आभा, वो तेज, वो चमक चारों ओर फैलती है। तो आत्मा उस गहन संतोष का अनुभव करे, पा लिया, इसकी अनुभूति ही उसे संतोष प्रदान करेगी। अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, यह संतोष पैदा करता है। पा लिया, जो पाना था वो पा लिया, जिसे देखना था उसे देख लिया, जिसे सुनना था वह सुन लिया, भगवान की आवाज सुन ली। क्या कहते हैं वो सुनो, उस आवाज को कहा ना कल, दो आवाजें बाप दादा सुन रहे हैं हॉल में, दो आवाजें हैं, कौन सी? एक बच्चों की और एक बाप की। तो हमने उसकी आवाज को सुन ली। कल एक विदेशी भाई मिला था, वो इतने नशे में था, अभी मुरली का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया नहीं है, तो उसने थोड़ा थोड़ा पकड़ा है बहुत सारी चीजें कि लैंप ऑफ बाबाज हार्ट, कितना नशा उसको चढ़ा, बाप के दिल के दीपक। बोला आज तक कभी सुना नहीं है सर, लैंप ऑफ बाबाज हार्ट। इतना उसको नशा चढ़ा हुआ है, लैंप ऑफ बाबाज हार्ट। और वो पूछता है, इस बार बाबा ने कुछ रिपीटेशन नहीं किया? वही तो हमने ऐसा देखा, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो, उसमें रिपीटेशन शायद बताया नहीं गया है। बाप के दिल में कौन बच्चे, बच्चों के दिल में कौन बाबा, बाप के दिल में कौन समा है? बच्चे। बच्चे के दिल में कौन समा है? बाबा। बाप के दिल में एक शब्द है, मेरे बच्चे। बच्चों के दिल में शब्द है, मेरे बाबा। तो ये हमेशा रहता है, इस बार ऐसा हुआ नहीं, वो बोल रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बड़ा दुख है उसको कि बाबा ने रिपीट नहीं किया है। पर वो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में कट कर दिया सारा। तो क्योंकि कितनी बार रिपीटेशन है, तो क्योंकि बाबा की भाषा को ट्रांसलेट करना। तो मन में संतोष, गहन संतोष, भगवान के नैनों के नूर है हम, भगवान के दिल में समाये हुए हैं हम, गहन संतोष की अनुभूति कराता है। और क्या आजकल चाहिए? और किसके दिल में अब समाना है? और किसके नैनों का नूर बनना है? स्वयं भगवान के नैनों के नूर, स्वयं भगवान के दिल में समाये हुए, स्वयं भगवान के दिल के दीपक हम है। सतयुग के, सतयुग को लाने का आधार हम है, भगवान कह रहा है। सदा खुश, अगर हम ही खुश नहीं है तो दुनिया वाले कैसे खुश रह सकते? दुनिया में तो अनेक आफतें हैं, अनेक मुसीबतें हैं, अनेक परेशानियां हैं, इतने झमेले और झंझट है, और भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, जागीर दी है, जागीर, बख्शीश दी है, इनाम दिया है, वर्षा दिया है। और जहां बाप है वहां और कोई भी बात वहां आ नहीं सकती। कौन सी बातें आती है? दुख की बातें, अशांति की बातें, व्यर्थ की बातें, ईर्ष्या, द्वेष और विकारों की बातें, कोई भी बात वहां नहीं आ सकती, जहां स्वयं सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां जहां पर है, वहां इस संसार की कोई भी व्यर्थ, कोई भी निगेटिव, कोई भी परिस्थिति, लौकिक अलौकिक से आने वाले विघ्न कोई भी ठहर नहीं सकते, रुक सामना नहीं कर सकते, जहां भगवान स्वयं है। परिस्थितियां तो आएगी, अंत तक आएगी, ये खेल चलता रहेगा, परंतु हम हमारा दृष्टिकोण बदल रहे, हमारे लिए अब ये खेल है, परिस्थितियां नहीं है, खेल है। खेल में क्यों जाते हैं? स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए। अखाड़ा होता है ना, अखाड़ा में क्यों जाते हैं? शक्तिशाली बनने के लिए। विवेकानंद ने कहा है, द वर्ल्ड इज अ जिम्नेशियम वेर यू गो टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये संसार जो है एक अखाड़ा है, मल्ल युद्ध यहाँ होता है। यहाँ पे मल्ल युद्ध करने क्यों जा रहे हैं? कुश्ती है यहाँ पर, शक्तिशाली बनने के लिए। हर दिन नई नई परिस्थितियां, जिसका कभी सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आकर सामने खड़ी होती है। वो सारी ही परिस्थितियां हमें बलवान बनाने के लिए आ रहे हैं। हमने हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया है। हर दिन नई नई परिस्थिति आएगी। सभी परिस्थितियों के बीच में भी फिर बाबा ने कहा, जहां बाप है वहां इस संसार की कोई भी बात वहां नहीं आ सकती, कोई भी विघ्न वहां ठहर नहीं सकता, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कुछ नहीं आ सकता। परंतु बाप वहां रहना चाहिए। बाप के दिल में कौन समाये हुए हैं? कौन से बच्चे? जो याद में रहते हैं वो उसके दिल में समाये हुए हैं। जो याद में नहीं है वो उसके दिल में समाये हुए नहीं है। वैसे तो कहा मेजोरिटी समाये हुए है, जो पीछे वाले वो समाये हुए है, पर परिभाषा गहरी होती गई है। जो याद में है वही उसके दिल में समाये हुए है, और किन के नैनों में वो बसा हुआ है? जो याद करते हैं उनके नैनों में वह बसा हुआ है। तो अपने हृदय को खोजना है, किस कारण से मैं असंतुष्ट हूं जीवन में, कौन से वो कारण है। ब्राह्मण बन गए और भगवान मिल गया, फिर भी जीवन में असंतोष, फिर भी वो आपाधापी अभी भी खत्म नहीं हुई है, फिर भी वो बेचैनी है, फिर भी वो असंतोष है, फिर भी एक भाव है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इस संसार की वस्तुओं की बात है, संसार, यहाँ का वैभव, सब यहाँ की इच्छाएं है, सब असंतुष्ट करता है व्यक्ति को। और जब तक संतोष नहीं तब तक प्रसन्नता आ नहीं सकती। प्रसन्नता अर्थात खुशी, प्रसन्नता अर्थात हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न जो है वो प्रसन्न है, खुश है, हर्षित है, चीयरफुल है, हैप्पी है। हैप्पीनेस को ही कल बाबा ने दवाई बताई है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दो काम है। बीमारी को खुशी आने नहीं देगी, प्रिवेंशन, और खुशी ही दवाई है, खुराक भी है। खुराक अर्थात, खुराक अर्थात भोजन। एक अर्थ खुराक का है भोजन, एक अर्थ जो मुख्य अर्थ है वो है न्यूट्रिशन, भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, परंतु खुराक का अर्थ डोज। हकीम लोग देते हैं ना, खुराक देते हैं, दवाई, दवाई का एक जो डोज है उसे खुराक कहा जाता है। दवाइयों का वन डोज, पुड़िया बना के जो हकीम देते हैं ना, हकीम लोग, हाँ उसको, वो जो डोज है उस डोज को खुराक कहा जाता है। परंतु इनफॉर्मल उसका अर्थ जो लिया जाता है वो न्यूट्रिशन, टॉनिक या फिर भोजन, ये भी खुराक के अर्थ है। तो बाबा कह रहे खुशी ही खुराक है। वो खुराक मिले ना मिले, ये खुराक सबसे अच्छी खुराक है। तो खुशी ही खुराक है, खुशी ही दवाई है, मेडिसिन है, मेडिकेशन है। क्यूरेटिव भी काम है तो प्रिवेंटिव भी है। अगर खुशी है तो, खुश है तो बीमार नहीं। हृदय में इतनी खुशी अगर है तो कोई बीमारी वहां नहीं आ सकती है। अगर देखा जाए और सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि जितनी बीमारियां हैं उन सब का कारण कहीं ना कहीं मन है। कहीं ना कहीं मन में है ज्यादा से ज्यादा बीमारी। इसके लिए लगता है कि उनको ये ले लू तो ठीक हो जाए, वो ले लू तो ठीक हो जाए, ये दियो दवाई, वो दवाई उसका इलाज नहीं है। इलाज यहाँ है। मरीज आता है कहता है कि मुझे बस सलाइन चढ़ा दो तो ठीक हो जाऊंगा। उसको इतनी दवाई कर ली पर जब तक सलाइन नहीं चढ़ती है तब तक वो ठीक नहीं लगता है। जब वो बेड पे लेटता है और टक टक लगाकर बूंद को पड़ते हुए देखता है सलाइन की बोतल को, तब उसके हृदय को शांति मिलती है। उसमें है कुछ नहीं,
पानी,
पानी है उसमें बस। पर जब बेड पे लिटाया जाता है और इधर पंचर थोड़ा होता है और बड़ा ही सुखद रीति से देखते रहता है एक एक बूंद को गिरते हुए, और जितना धीमे गति से गिरेगी उसको और ज्यादा अनुभव होता है तो और ज्यादा शक्ति आती है। बीमार कौन है, शरीर या मन?
तो बोतल में होता कुछ नहीं है ना।
जिसको जरूरत है उसके लिए सब कुछ है, और जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ नहीं होता है। उसमें पानी होता है, सलाइन होता है, नमक का पानी होता है, या ग्लूकोज डाला हुआ, तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है उसमें। परंतु जिसकी धारणा है कि ये जब तक नहीं चढ़ेगा, झोला छाप डॉक्टर पता है ना, गांवों में होते हैं, झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है उन्हें, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, हम बैग लेके घूमते हैं, उन्हें झोला छाप डॉक्टर्स कहा जाता है। तो वो ऐसे ही लोगों की तलाश में होते हैं, और उनको भी वही चाहिए। बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं मन ही बीमार है, तो उसी को ढूंढना है क्या है बीमारी। असंतोष बीमारी को जन्म देता है, मन का कोई ना कोई असंतोष, मन की कोई ना कोई बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, नफरत का भाव बीमारियों को जन्म देता है, और ऐसी बीमारियां कि जिनका कोई इलाज नहीं होता है, फिर भटकते रहता है मरीज यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। बाबा बात कर रहे प्रसन्नता की और संतोष की, तो स्वयं को चेक करना है कि कौन सी बातें असंतुष्ट करती है, जिसकी हम लिस्ट निकाल सकते हैं। एक तो कह दिया इच्छा है, जितनी ज्यादा इच्छा है उतना मन असंतोष असंतुष्ट, और बार बार असफलता से भी व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। कल की मुरली में कहा ना, सत्युग लाने वाले आप हो और सफलता है, सफलता के सितारे हैं हम, सफलता की गिफ्ट एक दूसरे के साथ में, बाप दादा के साथ सफलता की गारंटी है। और अगर भले असफल हो रहे हैं और बार बार कोई असफल होता है, तो वहां पर फिर असंतोष भी आता है, दुख आता है। परंतु स्वयं को स्वयं ही नशा चढ़ाना है, चाहे कितनी बार भी असफल हो जाए, परंतु विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परिस्थिति हमारे अगेंस्ट हो, फिर भी विजय हमारी ही है। ये भाव अगर मन में है तो कभी हम दुखी नहीं होंगे। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, कितनी बार असंतुष्ट हुए, कितनी बार असफल हुए, परंतु फिर भी छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो एक कारण है बार बार असफल होना, और इच्छा है पहला वही है सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा इच्छा है उतना ज्यादा असंतोष, क्योंकि इच्छा है दुष्पूर है, हिंदी में एक शब्द है दुष्पूर, दुष्पूर अर्थात कभी भी पूर्ण न होने वाली। पूरा बौद्ध धर्म जो है वो उसका आधार वही है कि संसार में दुख है, पहला वाक्य है, दुख का कारण है इच्छा है। जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता है। व्यक्ति को नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, प्रसिद्ध होने की इच्छा, नाम मान शान की इच्छा, अध्यात्म मार्ग में ये सब बातें हैं जो व्यक्ति को असंतुष्ट कर देता है, बेचैन कर देता है, अतृप्त करता है। तो ये बात है, और दूसरों की प्राप्ति देखकर व्यक्ति असंतुष्ट रहता है।
पहले अपनी प्राप्ति तो बहुत खुश, लेकिन दूसरों की प्राप्ति कुछ और है तो
थोड़ी ज्यादा है हमसे। दूसरों को सबको अगर एक जैसा मिलता है तो कुछ नहीं होता है, पर किसी को अगर थोड़ा ज्यादा मिल गया तो फिर दुख होता है। सबको सेम मिलना चाहिए तो दुख नहीं है, पर किसी को हमसे ज्यादा थोड़ा मिल गया तो फिर मन में असंतोष, और
बड़े डांटते हैं तो
असंतोष। अच्छा, सेवाएं बहुत अच्छी की, फिर भी डांट पड़ रही है तो असंतोष, और किसी ने प्रशंसा नहीं की, एक्नॉलेज नहीं किया, किसी ने माना नहीं, इतना करने के बाद में भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो वहां पर फिर व्यक्ति असंतोष का भाव आता है। और
बार बार बीमार पड़ते हैं।
अच्छा, बार बार बीमार पड़ते हैं तो सारे ये हिसाब किताब मेरे से ही है, मेरे ही है क्या? और
सहयोग
ना मिलता है किसी से तो सूक्ष्म कामना रहती है सहयोग की, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म कामना रहती है प्रेम प्राप्त करने की। प्रेम, सहयोग, सहारा, ये अगर ना मिले हमारे जीवन में, अगर कोई परिस्थिति आ गई, अगर किसी ने दूसरे ने सहयोग नहीं दिया तो दुख होता है। अगर हम बीमार पड़ गए और कोई देखने ना आए, केयर ना करे, पूछे ना, सूक्ष्म कामनाएं रहती है। सबसे पहला तो कामनाओं से ही मुक्त होना है। एक्सपेक्टेशंस, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतने ज्यादा दुखी। अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं, कामनाओं को कम करना है। थोड़ा भी कम कर दिए ना तो सुखी हो जाएंगे, थोड़ा भी कम किए तो संतुष्टता मन में आ जाएगी, वो एक कारण है। और
दूसरों का दुख देख के
और बाबा ने सारे राज बाबा बता चुका है, इतनी गहरी गहरी मुरली है। देखो बाबा को ये याद, कितनी गहरी गहरी चीजें पता है और बता रहा है। एक एक ग्रुप से बाबा कितना कितना देर मिल रहा है, इतना सब सारा ज्ञान वो दे चुका है। ऐसा कोई राज नहीं है जो रहा हुआ है। सारे राज, सारे समान, ड्रामा के राज, ज्ञान के राज, योग की युक्तियां, याद करने की युक्तियां, सेवा की प्रेरणाएं, सेवा की युक्तियां, सब कुछ बाबा बता चुका है। केवल हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। सारी अव्यक्तवाणियां 69 से चालू करो, फर्स्ट अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969, उसी मुरली में कितने सारे राज खोल दिए बाबा ने। फर्स्ट मुरली 46 इयर्स हो चुके हैं अव्यक्त पालना को, 47th चल रहा है। 46 इयर्स की कितनी सारी मुरलियां है टोटल, गिना है किसने? अव्यक्तवाणियां, टोटल अव्यक्तवाणियां हर सीजन की। हाँ, तो 1100 अव्यक्तवाणियां अगर पढ़ के समझ के अंदाज, इतनी सारी अव्यक्तवाणियां, एक एक अव्यक्तवाणी 8-8 पेज की है, 6-6 पेज की है, सारे ही राज उसमें बाबा ने बता चुके हैं।
ज्यादा ही बता दिए
नहीं, जो अभी कह रहे हैं ना लोग कि बाबा देखो अभी आते हैं, तो अभी मुरलियां कहाँ है, अभी तो मिलन है, वंडरफुल मिलन,
सुंदर मिलन,
अति सुंदर मुलाकात, विचित्र दृश्य, यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। ये भी वो विदेशी जो भाई मुझे मिला था, उसको सबसे अच्छी बात ये लगी, एज पर कैपेसिटी सब अपनी कुवत अनुसार ही बाबा को अनुभव कर रहे हैं। जिसकी जितनी, जिसका जिसमें जितना, जिसमें ज्ञान है उस अनुसार, जितना योग है उस अनुसार, जिस कितनी निष्काम भाव से सेवाएं की है उस अनुसार ही बाबा से बाबा का अनुभव कर रहे हैं आत्मा। बाबा ने बोल दिया सभी अनुभव कर रहे हैं यथाशक्ति, आत्मा की पावर कितनी है उस अनुसार ही बाबा का अनुभव हो रहा है। किसी में संकल्प चल रहा है ये आवाज क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और जिनकी स्थिति ऊपर है वो ये सब देख ही नहीं रहे, उन्हें तो बस बाबा क्या कह रहा है, बस उसी से लेना देना है। बाबा पहले आया, बाद में आया, कब आया, क्या करना है। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, टोटल अव्यक्तवाणी है, सारे राज बाबा ने, रहस्य उद्घाटन हो चुके हैं सारे। हम कहाँ पढ़ रहे, खोलो एक एक और एक 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 चालू करो। अभी हम ये एक अव्यक्तवाणी है जिसका एक ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बस। पढ़ने के बाद याद ना रहता, ये भी है।
यह संतुष्ट का मुख्य कारण है।
इसके लिए उसको गहराई से पढ़ना है, गहराई से पढ़ने। जैसे हमको कोई अगर रात में भी उठा के पूछे आपका नाम क्या है, तो नाम तो याद रहता है, क्यों? वो तो भूलता नहीं है। अनुभव किसी का हमने सुना था 10 साल पहले, वो अनुभव हमको याद है। उसके 10 साल के बाद उसने 10 लेक्चर दिए, वो भी सुने, वो याद नहीं है, पर उसका जो अनुभव था वो याद है। वो हर चीज जो दिल को छू जाती है वो याद रहती है। वो हर चीज जो हम उसको मन में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, थोड़ा 3D फॉर्म उसका बना लेते हैं, वो याद रहती है। वो हर चीज जो हमने जिस पर चिंतन किया हुआ है वो याद रहेगा, बाकी नहीं याद रहता। चिंतन जिस पर किया हुआ है, मनन जिस भी चीज का किया हुआ है वो याद रहता है। नहीं तो वो याद केवल अगर कहा कि कल सुनाना है, वो कल जैसा सुनाया उसके तुरंत सुनाने के बाद खत्म, याद नहीं रहता है। और जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो 24 घंटे के अंदर रिवाइज होनी चाहिए। ये एक सबसे मुख्य चीज है मेमोरी का, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे अभी ये पढ़ा, यहां से गए हरेक के पास यही पैराग्राफ फिर से एक बार 24 घंटे के बाद रिपीट होना चाहिए, खुद पढ़ना है। सुन लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो अच्छा ही लगता है, रस लगता है, परंतु उससे वो अंदर हमारे विचारों का एक हिस्सा बन जाएगा। उसके लिए खुद एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। जो भी हम सुनते हैं, मुरली आज सुनी, मुरली साकार मुरली, अब उसमें इतनी सारी पॉइंट्स है, कहां याद रहता है। परंतु उसको हम अपने स्तर पर, अपने लेवल पर एक बार उसको रिवाइज जरूर करें, और रिवाइज भी ऐसा करें कि चिंतन करते करते रिविजन हो। चिंतन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे, पढ़ भी रहे, चिंतन भी कर रहे, दोनों क्रिया एक साथ, तो वो थोड़ा 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 हमारा बुद्धि, हमारी बुद्धि उसको स्वीकार करेगी। अभी चीटी भी नहीं है, तो बुद्धि को क्या बना दो। कल का वरदान, बुद्धि को क्या बना दो। रहम दिल, मुख मधुर, दृष्टि अलौकिक, और मन शीतल। तो मन शीतल कैसे हो जाएगा, शांत हो जाए मन। संकल्प उसमें बहुत ज्यादा है तो शांत नहीं होगा। भावनाएं मीठी हो जाए तो मुख भी मीठा हो जाए। वो मुख मीठा होने के पीछे बहुत सारी चीजें कार्य करती है, भावनाएं काम करती है हमारे बोल के पीछे। हमारी किसी आत्मा के प्रति अगर निगेटिव भावना है तो अचानक एक ना एक दिन उसके प्रति कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, हम न चाहते हुए भी। भले हम बोलने के बाद पश्चाताप भी करें, परंतु भावनाएं कहीं ना कहीं निगेटिव है, कहीं ना कहीं मुख बोल का आधार है भावनाएं। तो काम सारा भावनाओं के ऊपर करना है, कि किसी बाबा जो कह रहे शुभ भावना शुभ काम, हजारों बार सुना है, पर क्या वाकई वास्तव में हमारी सारी भावनाएं शुभ हो चुकी है उन व्यक्तियों के प्रति, विशेषतर जो हमारे मार्ग में विघ्न बनकर आते हैं, कमेंट्स करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, डांटते हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति। तो खोजना है मन की परतों को, लेयर्स ऑफ माइंड, किस लेयर में कहां असंतोष छिपा हुआ है, एक एक परतों को खोलना है, देखना है कहां असंतोष है, जिस जीवन में असंतोष का कारण क्या है, इस जीवन में दुख का कारण क्या है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, फिर भी दुखी है चित्त, फिर भी पता नहीं असंतोष है कहीं ना कहीं, इसके लिए प्रसन्न नहीं है। केवल बोलने के लिए नहीं कि हम खुश है, खुश मतलब क्या, खुश कौन रह सकता है, केवल जोर जोर से हंसना ये खुशी नहीं है। तो खुशी क्या है, खुशी मतलब क्या, चेहरा केवल प्रसन्न, चेहरे के प्रसन्नता के पीछे भी क्या खुशी अर्थात क्या। ज्ञान के जो मनन में रहते हैं वो खुश है, वास्तव में देखा जाए तो जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं वो खुश है, जिनका बाबा से निरंतर एक अदृश्य कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, एक ऐसा संबंध जुड़ा हुआ रहता है कि जो टूटता नहीं, एक खजाना उनको मिल रहा है, भरते हुए किसी ने ना देखा फिर भी झोली भर जाती है, गीत है ना, कोई देखता नहीं अदृश्य है, परंतु वो खजाना जैसे उसको अंदर ही अंदर मिल रहा है, अंदर ही अंदर अनुभव हो रहा है, तुम वास्तव में तुम एक एक कौन हो, कुबेर हो, वो अनुभव वास्तव में तुम एक एक कुबेर हो। एक 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 अव्यक्तवाणी, कल बोला था ना, एक कुछ तो छूट गया है, कौन सा था वो? तुम एक 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 बाप के दिल में समाए हुए हो। एक 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 बाप के दिल में समाए हुए हो। दादी से मुलाकात करते हुए हर एक ये ना सोचे कि हमसे बाबा मिलन नहीं मना रहे हैं। एक 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 बाप के दिल में समाए हुए हो, तो यह अनुभव यही संतुष्टता का आधार है कि हमें सब कुछ मिल गया है, हमें वह मिल गया है। नहीं तो जीवन में यहाँ इतना व्यर्थ है, आसपास इतना व्यर्थ है कि हम हर एक चीज को ठीक करने जाए तो हम ही गिर जाएंगे। इसके लिए हमें बाबा ने क्या कहा कल, कितने दिन से साकार मुरलियों के समय से बाबा स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, और अभी इतने सालों के बाद भी वही बात बाबा कह रहा है। कोई कल की साकार मुरली में भी गारंटी शब्द था, गारंटी है, कल की अव्यक्तवाणी में भी गारंटी है।
मेरा बाबा मेरे बच्चे और यही सीजन की मुरली, और खुश रहो,
वही चीज है, खुश रहो, खुशी बांटो। बाप को सब कुछ सुना दो, लास्ट सीजन की मुरली, एक दिन भी लेट नहीं करना है, और कल की साकार मुरली, कोई सुनाते हैं, कोई नहीं सुनाते हैं, बाप को सब कुछ सुना दो, नहीं तो नहीं सुनाएंगे तो अंदर दिल खाती रहेगी, छिपा के रखते हैं, लज्जा आती है। कल की मुरली तो कल की साकार मुरली 69 के पहले की, और पिछले सीजन की अव्यक्त मुरली है, बाप को सब कुछ सुना दो। अगर बाप तक पहुंच नहीं सकते तो बड़ों को सुना दो, एक दिन भी डिले नहीं करना, एक दिन भी लेट नहीं करना, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। कनेक्शन देखो सबका एक ही चीज है, बाबा एक ही बात बार 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 रिपीट कर रहा है, परंतु हमको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। ये मुरली सबके हाथ में तो आ गई है, पढ़ भी लिया एक बार, डिस्कशन भी कर लिया, थोड़ा प्लानिंग भी बना लिया, फिर उसका कंप्यूटर पे बैठ के हमने वो भी कर लिया, थोड़े मेन पॉइंट्स भी निकाल लिए और पढ़ भी लिए, और सब हो गया, उसके बाद ये रह गई बाजू में, इसका काम पूरा हुआ, अभी दूसरे का इंतजार है। दूसरे बार पता नहीं कहाँ रखी थी, पिछली बार खटिया के नीचे कहाँ, बिस्तर के नीचे कहाँ रखी थी, वही पता नहीं कहाँ तो रखी थी, पर ढूंढना पड़ता है। इसको ऐसा कर दो कि ये केला होता है ना, केला खाओ छिलके, बस तो ये इसको ऐसा रख दो, सीधा यहाँ प्रिंट कर दो इसको। अभी यहाँ प्रिंट होने के लिए इतनी गहराई से उसको पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार पढ़ लिया से नहीं होगा, बस एक ही लाइन, बाप दादा सभी स्नेही बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच रही है, एक ही लाइन पढ़ा और रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, रुको थोड़ा। वो जूस कैसे पीते है ऑफिसर या गार्डन में, थोड़ा थोड़ा चुस चुस के थोड़ा सा पिया, फिर रख दिया, आनंद लेते लेते, ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ लिया आई मुरली और फटा 15 मिनट में पूरा कर लिया और संतुष्ट था, हो गया पूरा, हाँ अपना काम पूरा हुआ। क्योंकि ये अव्यक्त तो मुरली कहीं पढ़ी नहीं जाती है, यहाँ तो नहीं पढ़ते ना, तो सेंटर पर भी पढ़ते है, तो इसको एक एक लाइन जैसे वो एक एक घुट पीनी है, समझना है उसको।
बाबा ने क्यों किया, क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकल में नहीं लाया,
इसके लिए इस मेरेपन के अनुभव की गहराई में जाना है। कल नहीं, प्रभु मिलन का जो क्लास है उसमें सूरज भाई कितना अच्छा बता रहे थे कि माँ बाप जो होते हैं वो, अगर किसी माँ बाप को कहा गया कि अपने बच्चों की तकदीर लिखो तो अच्छा ही लिखेंगे ना, तो यहाँ तो स्वयं भगवान माँ बाप है, तो कितनी बड़ी तकदीर लिखेगा अपने बच्चों की, अच्छी से अच्छी लिखेगा, चाहे कितना भी कोई पाप करे, कुछ भी करे, परंतु अब वो भगवान का बन चुका है। वो अनुभूति किताब है, उसमें 64th या 65th वा एक पढ़ना कॉमेंट्री, 64, 62 इसी रेंज में, 60 और 65 के बीच में एक कॉमेंट्री है, जिसमें इतना अच्छा एक दृश्य क्रिएट किया गया है कि सूक्ष्म वतन में हम बाबा के पास जा रहे अपने सभी किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए। बाबा बैठे हुए हैं, बाबा के पास गए, बाबा के घुटनों के ऊपर सर रख दिया और अब तक जो किए हुए जघन्य अपराध है, काम विकार के वशीभूत किए हुए सारे अपराध है, वो सभी बाबा को अवगत करा रहे उन अपराधों से। बाबा को बता रहे कि बाबा हमने काम विकार के द्वारा, विकारों के वशीभूत होकर, देहभान में आकर ये पाप किए हैं और तुम क्षमा के सागर हो, बाबा से क्षमा मांग लेना। 63 जन और ब्राह्मण बनने के बाद में किए हुए सारे ही विकर्म। और बाबा ने हाथ रखा और फिर हमको हल्कापन का अनुभव हुआ और फिर अनुभव हुआ कि हम सभी पापों से अब मुक्त हो गए हैं और फिर इस तन में पुनः आ जाना। इस तरह से नई नई कॉमेंट्रीज है, बहुत अच्छा है। कौन सा 62 है शायद, बड़ी कॉमेंट्री है पूरी। ऐसी ही कॉमेंट्री हमें अपनी तैयार करनी है और नई नई कॉमेंट्रीज, नए नए ढंग, बाबा से बात करना, स्वयं से बात करना और ज्ञान का चिंतन करना, ये तीन चीजें रोज होती रहे। खुद से बातें करते रहना, दूसरा भगवान से बातें करते रहना और तीसरा मुरली का चिंतन करते रहे। केवल पढ़ना नहीं है उसको, ठहर जाए बस वहां पर, आगे बढ़ो नहीं जब तक वो समझ में नहीं आता है। एक एक लाइन, एक एक शब्द, शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, सब कुछ समझ में आए, क्या कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सब हमको समझ में आए तो फिर थोड़ा मजा भी आए पढ़ने में। नहीं तो बस केवल पढ़ लिया और हो गया काम पूरा। एक एक लाइन ऐसी हो कि जो चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड, वो जो ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, उसमें वो चली जाए, अंदर ही अंदर समा जाए अंदर। तो ये काम करना है। ओम शांति।